पद 40 का गुप्त इतिहास संख्या 7, 11 और 22।
दानियल अध्याय का 11 के पद 16 और पद 22 दोनों ही शीघ्र आने वाले रविवार व्यवस्था के साथ मेल खाते हैं। पद 10 की 1979 में हुई पूर्ति 2014 के यूक्रेनी विनिल्स तक ले गई, जैसा कि 225 ईसा पूर्व में पद 11 की पूर्ति के रूप में राफिया की लड़ाई द्वारा निरूपित है। पद 11 से लेकर पद 16 तक वही है जो पद 11 से लेकर पद 22 तक है, इसलिए पद 40 का गुप्त इतिहास जैसा कि पद 11 से 16 में निरूपित है, वही पद 11 से 22 तक के इतिहास के रूप में भी निरूपित है। पद 40 का गुप्त इतिहास पद 11 से 22 तक में निरूपित है।
अध्याय 11 से 22 तक
वो गुप्त इतिहास उत्पत्ति, मत्ती, प्रकाशित वाक्य और द डिजायर्स ऑफ एजेस के अध्याय 11 से 22 में भी निरूपित किया गया है। 11 से 22 अध्यायों के वे चारों साक्षी उस गुप्त इतिहास के साथ सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि गुप्त इतिहास दानियल 11 में 11 से 22 पद है। उन चारों साक्षियों का केंद्र सदा वाचा के चिन्ह की पहचान कराता है, जो उत्पत्ति के अध्याय 11 में निम्रोद द्वारा निरूपित मृत्यु की वाचा से आरंभ होकर प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 में रोम की वेश्या पर समाप्त होता है।
17
मत्ती को छोड़कर चारों साक्षी अध्याय 17 को उस अवधि का मध्य बिंदु पहचानते हैं जिसका वे चित्रण करते हैं। संख्या 17 उन 3250 वर्षीय भविष्यवाणियों में भी तीन बार पाई जाती है, जो 157 ईसा पूर्व 64 और 57-76 में आरंभ हुई थी। उन रेखाओं में से दो, पहली और अंतिम, एक मध्य बिंदु की पहचान करती हैं, जब 157 ईसा पूर्व की पहली रेखा 262 ईसा पूर्व में समाप्त हुई और 57-76 की अंतिम रेखा 2026 में समाप्त होती है। 262 ईसा पूर्व राफिया और पैनियम की लड़ाइयों के बीच था और 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति का मध्यकाल है। तीनों 250 वर्षीय रेखाओं के भीतर टॉलेमी ने 17 वर्ष तक राज्य किया। नीरो की रेखा में 313 और 323 के बीच 17 वर्ष है और 772 ईसा पूर्व में राफिया के युद्ध तथा 223 ईसा पूर्व में पैनियम के युद्ध के बीच भी 17 वर्ष थे। अध्याय 11 से 22 तक के चार साक्षियों में से तीन अपने ठीक मध्य बिंदु को अध्याय 17 के रूप में चिन्हित करते हैं, इसलिए पद 40 का गुप्त इतिहास उसी अध्याय के पद 11 से 22 में निरूपित है और अध्याय 11 से 22 के चारों साक्षी उन्हीं पदों के साथ संग्रहित होते हैं। तीनों 250 वर्षीय भविष्यवाणियों में से प्रत्येक की पूर्ति उसी एक ही इतिहास के साथ संग्रहित होती है। मध्य बिंदु को एक मार्ग चिन्ह के रूप में विशेष बल दिया गया है और इसे विशेष रूप से परमेश्वर की प्रजा की वाचा और मुहर के प्रतीक के रूप में पहचाना गया है।
दानियल 12 अध्याय।
दानियल अध्याय 12 के पद 7, 11 और 12 144,000 के मुद्रांकन की अंतिम अवधि की पहचान करते हैं। पद 7 31 दिसंबर 2023 की पहचान करता है और पद 12 18 जुलाई 2020 की पहचान करता है। पद 7 का वो बिखराव जो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुआ और जो 18 जुलाई 2020 को आरंभ हुआ था, दानियल 12 में स्थित भविष्यवाणी संबंधी समय के इन तीन पदों के अल्फा और ओमेगा में निरूपित किया गया था। 1290 वर्षों वाला मध्य पद 1990 के से शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक के इतिहास को 30 के रूप में पहचान करता है और फिर मानवीय अनुग्रह अवधि के समापन तक 1206 को 30 वर्ष जो 144,000 के याजकत्व की आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं और 206 वर्ष जो प्रकाशित वाक्य 13 के प्रतीकात्मक 42 महीनों का प्रतिरूप है। 1260 वर्षों के पश्चात 30 की द्वैध भविष्यवाणी, अब्राहम और पौलुस की 400 और 460 वर्षों की द्वैध वाचा भविष्यवाणी का एक प्रतीक है। दानियल 12 में समय से संबंधित तीन पदों का मध्य बिंदु 13वें अक्षर के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही 144,000 की वाचा और मुहरबंदी पर भी बल देता है। ये तीनों पद गुप्त इतिहास के साथ भी संरेखित होते हैं और इस बात पर बल के एक और साक्षी को जोड़ते हैं कि मध्य बिंदु वाचा का एक प्रतीक है।
वसंत और शरद ऋतु,
इन सभी रेखाओं के साथ हमें लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 में स्थित वसंत और पतझड़ के पर्वों के तीन साक्षियों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जो क्रूस के इतिहास में पिंटिकुस्त के काल के साथ संरेखित और संयुक्त है। वह अध्याय 23 है जो मसीह के प्रायश्चित के कार्य का एक प्रतीक है। ये अध्याय 44 पदों से बना है, जो प्रतीकतात्मक रूप से 22 अक्टूबर 1844 का प्रतिनिधित्व करते हैं। 22 अक्टूबर अक्टूबर के 22 दिनों को दर्शाता है, जो पहले दिन से आरंभ होकर 22वें दिन पर समाप्त होते हैं। इस प्रकार हिब्रू वर्णमाला की प्रामाणिकता को धारण करते हुए अक्टूबर, जो 10वां महीना है, जब 22वें दिन से गुणा किया जाता है तो 222 जटों में होता है। इब्रानी पंचांग में 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन था और 7 × 10 = 70 होता है, जो परीक्षा काल के समय का एक प्रतीक है। 2300 वर्ष 1854 में समाप्त हुए, जब तीसरा स्वर्गदूत पहुंचा, जैसा कि उस अवधि का आरंभ कराने वाली तीसरी आज्ञप्ति द्वारा प्रतिरूपित किया गया था। 2300 दिनों के आरंभ में प्राचीन शाब्दिक इसराइल को तब परीक्षा काल के रूप में निर्धारित 70 सप्ताह प्रदान किए गए थे और उन दिनों के अंत में आधुनिक आत्मिक इसराइल के लिए परीक्षा काल 7वें महीने के 10वें दिन द्वारा निरूपित किया गया था, जो 70 के तुल्य है। 22 अक्टूबर 1844 शीघ्र आने वाले रविवार के विधान का प्रतिरूप है और वहीं पर सेवेंथ डे एडवेंटिज्म के लिए परीक्षा काल के सांकेतिक 70 वर्ष समाप्त होते हैं, जैसा कि यह यहूदियों के लिए तब हुआ था जब स्टिफनोस पर पथराव किया गया था। 844 उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जब दो स्वर्गदूत आए, दूसरा पहली निराशा के समय और तीसरा महान निराशा के समय। 44 एक द्विगुणित संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दानियल 11 के 44वें पद में पूर्व और उत्तर से आने वाली खबरों द्वारा निरूपित है। लैव्य व्यवस्था 23 में 44वें पद हैं, जो पवित्र पर्वों को वसंत और पतझड़ में विभाजित करते हैं। वे 44वें पद एक द्विगुणित संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ऋतुएं 22-22 पदों का द्वारा निरूपित हैं, इसलिए वसंत और पतझड़ दोनों पर्व इब्रानी पंचांग के 22 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब 22 पदों के वे दो साक्षी पेंतकोस्त की ऋतु के साथ एक साथ लाए जाते हैं, तब वे तीन चरणों की एक रूपरेखा उत्पन्न करते हैं। पहला मार्ग चिन्ह तीन भागों से बना है, जिसके बाद 5 दिन आते हैं, और यही बात तीनों मार्ग चिन्हों में से अंतिम पर भी लागू होती है। मध्य मार्ग चिन्ह वे 30 दिन हैं, जिनमें मसीह आमने सामने उन लोगों को शिक्षा देते हैं जो विजयी कलीसिया में सेवा के लिए याजकों के रूप में अभिषिक्त किए जा रहे हैं। लैव्य व्यवस्था 23 पद 40 के गुप्त इतिहास के साथ संरेखित होता है।
मध्य बिंदु
उत्पत्ति की ज्ञान 11वें अध्याय से 22वें अध्याय तक की रेखा का मध्य बिंदु अध्याय 17 है, जहां इब्राहिम की तीन चरणीय वाचा का दूसरा चरण और खतने का चिन्ह स्थापित किया गया। 11वें से 22वें अध्याय तक स्थित समस्त पदों का ठीक मध्य उत्पत्ति 17:22 है।
परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ स्थापित करूंगा, जिसे सारा अगले वर्ष इसी नियत समय पर तेरे लिए उत्पन्न करेगी। और वो उससे बातें करके समाप्त हुआ और परमेश्वर अब्राहम के पास से ऊपर चला गया। उत्पत्ति 17:22।
परमेश्वर ने पद 1 में अब्राहम से बोलना आरंभ किया और पद 22 में अपनी वार्ता समाप्त की। अतः खतने की वाचा का समस्त संवाद इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षरों के भविष्य सूचक संदर्भ के भीतर स्थापित किया गया, जबकि उन 22 पदों का विषय खतने की वो रीति था जो 8वें दिन पूरी की जानी थी। उत्पत्ति के इस खंड का केंद्र अथवा मध्य बिंदु अब्राहम की खतने की वाचा द्वारा निरूपित 144,000 के साथ परमेश्वर के वाचागत संबंध में है। उत्पत्ति की 11वीं से 22वें अध्यायों तक की अध्याय रेखा का मध्य बिंदु अध्याय 17 है और उस अध्याय का पूर्ण मध्य बिंदु पद 22 है, जहां परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की अपनी वार्ता विराम देते हैं। इस प्रकार मध्य बिंदु को इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षरों के संदर्भ में स्थापित किया गया है और उन 22 पदों का मध्य बिंदु निस्संदेह पद 11 है।
और तुम अपनी खतना की चमड़ी का खतना करोगे और वो मेरे और तुम्हारे बीच की वाचा का चिन्ह होगा। उत्पत्ति 17:11।
बाइबल में 11वें से 22वें अध्यायों के चार खंडों के मध्य बिंदुओं में मध्य बिंदु के विचार को पूर्ण करने के लिए तीन पद सम्मिलित है।
ये मेरी वाचा है जिसे तुम मेरे और अपने बीच और अपने बाद अपने वंश के साथ मानोगे। तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए और तुम अपनी चमड़ी का खतना करना, और ये मेरे और तुम्हारे बीच वाचा का मन ठड़ेगा, और तुम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक 8 दिन का पुरुष बालक खतना किया जाए, चाहे वो घर में उत्पन्न हुआ हो या किसी परदेसी से धन देकर मोल लिया गया हो जो तेरे वंश का ना हो। उत्पत्ति 17:10-12।
एक टोकन, एक चिन्ह है जो एक ध्वज चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। ये अनुच्छेद उस ध्वज चिन्ह के विषय में है जो 144,000 से ज्यादा है। नर बालक का खतना 8वें दिन किया जाना था, जैसे नूह की वाचा जहाज में स्थित 8 प्राणियों के साथ थी। इस प्रकार संख्या 8 का प्रयोग नूहकालीन वाचा को अब्राहिमी वाचा के साथ जोड़ने के लिए किया गया। उन्हें फिलाडेल्फियाई होना है क्योंकि उनका खतना किया जाना है, जिसे पौलुस देह के क्रूसीकरण के प्रतीक के रूप में पहचानता है। जब देह क्रूस पर चढ़ा दी जाती है तब मसीह की दिव्यता भीतर होती है, और वही संयोग ध्वज चिन्ह है, क्योंकि जैसा कि सिस्टर व्हाइट कहती है, When Christ character is perfectly reproduced in his children, he will return for them।
मानव स्वभाव भ्रष्ट है और एक पवित्र परमेश्वर के द्वारा न्यायोचित रीति से दोषी ठहराया गया है, परंतु पश्चाताप करने वाले पापी के लिए प्रबंध किया गया है ताकि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के प्रायश्चित पर विश्वास के द्वारा वो पापों की क्षमा प्राप्त करे, धर्मी ठहराया जाए, स्वर्गीय परिवार में दत्तक ग्रहण किया जाए और परमेश्वर के राज्य का वारिस बने। चरित्र का रूपांतरण पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है जो मानवीय कर्ता पर कार्य करती है और उसकी इच्छा तथा इसे संपन्न होने देने की उसकी सहमति के अनुसार उसमें एक नया स्वभाव आरोपित करती है। परमेश्वर की छवि आत्मा में पुनः स्थापित की जाती है। दिन प्रतिदिन वो अनुग्रह के द्वारा दृढ़ और नया किया जाता है तथा और भी अधिक पूर्ण रीति से धर्म और सच्ची पवित्रता में मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करने योग्य बनाया जाता है। वाह तेल, जिसकी इतनी आवश्यकता उन लोगों को है जिन्हें मूर्ख कुवारियों के रूप में दर्शाया गया है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लगा लिया जाए। उन्हें सत्य को आत्मा के पवित्र स्थान में लाना है ताकि वो शुद्ध करे, परिष्कृत करे और पवित्र ठहराए। उन्हें सिद्धांते मात्र की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाइबल की वे पवित्र शिक्षाएं चाहिए जो अनिश्चित असंबद्ध मत नहीं हैं, वरन जीवित सत्य हैं, जिनमें वे अनंत हित सम्मिलित हैं, जिनका केंद्र मसीह में है। उसी में ईश्वरीय सत्य की पूर्ण व्यवस्था है। मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मा का उद्धार सत्य की भूमि और खंभा है। जो मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं वे उसे चरित्र की पवित्रता और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता के द्वारा प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि सत्य जैसा कि वो यीशु में है स्वर्ग तक पहुंचता है और अनंतता को अपने घेरे में लेता है। वे समझते हैं कि मसीही का चरित्र का प्रतिनिधित्व करे और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण हो। उन्हें अनुग्रह का तेल प्रदान किया जाता है जो कभी न बुझने वाली ज्योति को बनाए रखता है। विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा उसे मसीह में पूर्ण बनाता है। ये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि कोई पुरुष या स्त्री मसीही है, केवल इसलिए कि उत्तेजक परिस्थितियों में वो गहन भावोत्तेजना प्रकट करता या करती है। जो मसीह तुल्य है उसके प्राण में एक गहरा दृढ़ निश्चयी धैर्यवान तत्व होता है, तो ही उसे अपनी दुर्बलता का बोध रहता है और वो शैतान के द्वारा धोखा खाकर और भरमाया जाकर आत्मविश्वास करने के लिए प्रेरित नहीं होता। उसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान है और वो जानता है कि वो तभी सुरक्षित है जब वो अपना हाथ यीशु मसीह के हाथ में रखता है और उस पर दृढ़ पकड़ बनाए रखता है। चरित्र संकट के द्वारा प्रकट होता है। जब आधी रात को गंभीर स्वर ने ये घोषणा की, देखो दूल्हा आता है, उससे भेंट करने के लिए बाहर निकलो, तब सोई हुई कुंवारियां अपनी नींद से जाग उठी और ये प्रकट हो गया कि किसने उस घटना के लिए तैयारी की थी। दोनों दल अचानक पकड़े गए
परंतु एक आपातकाल के लिए तैयार था और दूसरा बिना तैयारी के पाया गया। चरित्र परिस्थितियों के द्वारा प्रकट होता है। आपात स्थितियां चरित्र की वास्तविक धातु को उजागर कर देती हैं। कोई आकस्मिक और अप्रत्याशित विपत्ति, शोक या संकट, कोई अनपेक्षित बीमारी या पीड़ा, ऐसी कोई बात जो प्राण को मृत्यु के आमने सामने ला खड़ा करे, चरित्र की सच्ची आंतरिकता को प्रकट कर देगी। ये स्पष्ट हो जाएगा कि परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं में कोई वास्तविक विश्वास है या नहीं। ये भी प्रकट हो जाएगा कि प्राण अनुग्रह के द्वारा संभाला जाता है या नहीं, और क्या दीपक के साथ पात्र में तेल है।
परीक्षा के समय सब पर आते हैं। परमेश्वर की परीक्षा और परख के अधीन हम अपना आचरण कैसे रखते हैं? क्या हमारे दीपक बुझ जाते हैं, अथवा क्या हम उन्हें अब भी जलाए रखते हैं? क्या हम उससे जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है, अपने संबंध के द्वारा प्रत्येक आकस्मिक संकट के लिए तैयार हैं? पांच बुद्धिमान कुमारियां पांच मूर्ख कुमारियों को अपना चरित्र नहीं दे सकी। चरित्र हमें व्यक्तियों के रूप में स्वयं गढ़ना होता है। उसे किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, चाहे उसका स्वामी ऐसा बलिदान करने को इच्छुक ही क्यों न हो। जब तक दया ठहरी हुई है, तब तक हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मसीह के चरित्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हम भूल करने वालों को विश्वास योग्य चेतावनियां दे सकते हैं। हम समस्त धीरज और उपदेश के साथ ताड़ना दे सकते हैं, डांट सकते हैं, पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं को हृदय तक पहुंचा सकते हैं। हम हार्दिक सहानुभूति दे सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक जीवन जीकर, पवित्र बातचीत बनाए रखकर, हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि एक मसीही को कैसा होना चाहिए। परंतु कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपने चरित्र की छाप नहीं दे सकता। आइए हम इस तथ्य पर समुचित रीति से विचार करें कि हमें समूहों के रूप में नहीं, वरन व्यक्तियों के रूप में उद्धार पाना है। हमारा न्याय उस चरित्र के अनुसार किया जाएगा जिसे हमने गढ़ा है। आत्मा को अनंत काल के लिए तैयार करने की उपेक्षा करना और मृत्युशैया पर पहुंचने तक परमेश्वर के साथ अपनी शांति स्थापित करने को टालते रहना अत्यंत संकटपूर्ण है। जीवन के प्रतिदिन के व्यवहारों के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जिसे हम प्रकट करते हैं, हम अपनी अनंत नियति का निर्धारण करते हैं। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। यदि हमने मसीह को अपना आदर्श बना लिया है, यदि हम वैसे ही चले और काम करते रहे हैं जैसा उसने अपने जीवन में हमें उदाहरण देकर दिखाया है, तो हम उन गंभीर आश्चर्यों का सामना कर सकेंगे जो हमारे अनुभव में हम पर आएंगे और अपने हृदय से कहेंगे, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह अनुग्रह अवधि का समय है, अर्थात वही समय जिसमें हम जी रहे हैं, जब हमें उद्धार की शर्तों पर शांत चित्त होकर मनन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन में निर्धारित नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने को घंटे घंटे और दिन प्रतिदिन सावधानी पूर्वक अनुशासन के द्वारा प्रत्येक कर्तव्य का पालन करने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें परमेश्वर तथा यीशु मसीह को, जिसे उसने भेजा है, जानने वाले बनना चाहिए। प्रत्येक परीक्षा में ये हमारा विशेषाधिकार है कि हम उस पर आश्रय लें जिसने कहा है, वह मेरी शक्ति को पकड़ लें जिससे वो मेरे साथ मेल कर ले, और वो मेरे साथ मेल कर लेगा। प्रभु कहता है कि वो हमें पवित्र आत्मा देने के लिए उतना ही नहीं, वरन माता पिता के अपनी संतानों को रोटी देने से भी अधिक इच्छुक है। इसलिए आओ हम अपने दीपकों के साथ अपने पात्रों में अनुग्रह का तेल रखें, जिससे हम उन लोगों में न पाए जाएं जो मूर्ख कुमारियों के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकलने को तैयार न थीं। रिव्यू एंड हेरल्ड, सितंबर 17, 1895।
144,000 का ध्वज, जिनका पूर्व रूप अब्राहम के खतने और जहाज पर की 8 आत्माओं द्वारा प्रकट किया गया था, उस दृष्टांत की बुद्धिमान कुमारियां हैं जो शीघ्र आने वाले संकट में मसीह के चरित्र को सिद्ध रूप से प्रतिबिंबित करती है। ये सर्वथा उपयुक्त है कि सिस्टर व्हाइट ने उस अनुच्छेद का समापन यशाया का उद्धरण देकर किया, क्योंकि वो एक ऐसा अंश है जो सी सहित 144,000 के मुहर बंद किए जाने के समय की ओर संकेत करता है।
उस दिन तुम उसके विषय में ये गीत गाना, लाल दाख मधु की एक दाख की बारी, मैं
यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं हर क्षण उसे सींचूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे, मैं रात दिन उसकी रखवाली करूंगा। मुझमें क्रोध नहीं है, युद्ध में कौन मेरे विरुद्ध ऊंट कटारे और कांटे खड़े करेगा। मैं उन पर चढ़ जाऊंगा, मैं उन सबको एक साथ जला दूंगा, अथवा वो मेरी शक्ति को पकड़ ले ताकि वो मुझसे मेल करे, और वो मुझसे मेल कर लेगा। वो याकूब से उत्पन्न होने वालों को जड़ पकड़वाएगा, इज़राइल फूलेगा और कोंपले निकालेगा और जगत के मुख को फल से भर देगा। क्या उसने उसे वैसे ही मारा है जैसे उसने उन लोगों को मारा जिन्होंने उसे मारा था? अथवा क्या वो उसी प्रकार घात किया गया है जैसे उसके द्वारा घात किए गए लोगों का वध हुआ? परिमाण में जब वो बढ़ने लगे तब तू उसका न्याय करेगा। पूर्वी पवन के दिन वो अपनी प्रचंड वायु को रोक लेता है। इस कारण याकूब का अधर्म इसी से दूर किया जाएगा, और उसके पाप को दूर करने का सारा फल ये होगा कि जब वो वेदी के सब पत्थरों को पीसे हुए खड़िया पत्थरों के समान कर देगा, तब अशेरा स्तंभ और मूर्तियां खड़ी ना रह सकेंगी। तो भी गढ़वाला नगर उजाड़ होगा और निवास स्थान छोड़ा हुआ और जंगल के समान पड़ा रहेगा। वहां बछड़ा चराई करेगा, वहीं वो लेट रहेगा और उसकी डालियों को चट कर जाएगा। जब उसकी टहनियां सूख जाएंगी तब वे तोड़ी जाएंगी, स्त्रियां आकर उन्हें आग में झोंक देंगी। क्योंकि ये ऐसी प्रजा है जिसमें समझ नहीं, इस कारण उसका कर्ता उन पर दया न करेगा और उसका रचयिता उन पर अनुप्रगर न करेगा। यशाया 27:2-11।
पूरब की वायु के दिन में जब याकूब का अधर्म दूर किया जा रहा है और निर्बुद्धि लोगों के दूसरे वर्ग को इकट्ठा करके जलाया जा रहा है, तभी 1,44,000 के मुद्रांकन का समय है। उस अवधि में जो कोई मसीह के साथ मेल करना चाहता है वो ऐसा कर सकता है, परंतु अंतिम घटनाएं तीव्र गति से घटित होती हैं। जब याजक सेवा आरंभ करते थे तब उनकी आयु 30 वर्ष की होनी थी, और 1,44,000 पतरस की उस याजकों के राज्य हैं जो अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ वाचा को नया करते हैं।
तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, ताकि एक पवित्र याजक वर्ग होकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार्य हों। 1 पत्रस 1:16।
याजकों को 8 दिवसीय याज अभिषेक सेवा के लिए सेवा करने को तैयार किया गया था, अतः संख्या 8 उस अभिषिक्त याजकत्व का प्रतीक है जो संदूक के भीतर है।
हारून की लाठी
1,44,000 की अभिषिक्त याजकत्व का प्रतीक वाचा के संदूक के भीतर हारून की उस लाठी द्वारा किया गया है जिसमें कलियां फूटी थीं। जब हारून की लाठी में कलियां फूटी तब उसने हारून और इसराइल के गोत्रों की अन्य लाठियों के बीच जिनमें कलियां नहीं फूटी थीं एक भेद प्रकट किया। पवित्र शास्त्र में पौधों में कली फूटने का कारण वर्षा ही बताई गई है। सब भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों का ही संबोधन करते हैं, इसलिए हारून की याजकत्व की छड़ी 1,44,000 के अभिषेक का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी परिस्थिति में जो कर्मेल पर एलिया और 1844 के मिलाइराइटों के साथ सामंजस्य रखती है, ये उस बिंदु को संबोधित करती है जब पिछली वर्षा के सच्चे और झूठे संदेशों के बीच स्पष्ट भेद प्रकट होता है। ये भेद योएल द्वारा प्रकट किया जाता है जब वो एक वर्ग से नया दाख मधु कार्ड डाले जाने की पहचान करता है। वो वर्ग जिसके मुख से नया दाख मधु कार्ड डाला जाता है, यशाया के एप्रैम के मतवाले, वे वही लोग भी हैं जिन्होंने पिंतेकोस्त के समय चेलों पर मतवाला होने का आरोप लगाया था, और वे 1888 की विद्रोही है जिन्होंने अपने पितरों का अनुसरण किया जो 1863 के विद्रोही थे। भविष्यद्वाणी की वे सब रेखाएं उस रेखा के साथ मेल खाती हैं जिसे सिस्टर व्हाइट उस समय घटित होने वाली ठहराती हैं जब संसार ये जान लेता है कि एडवेंटिज्म लगभग 125 वर्षों से नैशविल के अग्निगोलों के विषय में जानता रहा है और उसने कुछ नहीं कहा।
8:80-81
30 संख्या और 8 संख्या उन 144,000 की याजकाई के प्रतीक हैं जो अंतिम दिनों का ध्वज हैं और जो दिव्यता तथा मानवता के संयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
8 संख्या 80 संख्या का दशमांश है और 80 संख्या उन 80 पराक्रमी याजकों की संख्या है जिन्होंने महायाजक के साथ मिलकर राजा उज्जियाह का सामना किया जब उसने पवित्र स्थान में धूप चढ़ाने का प्रयत्न किया। 81 विजयी कलीसिया की याजकाई के संदर्भ में मानवता के साथ संयुक्त दिव्यता का प्रतिनिधित्व करती है। उज्जियाह तू याजकों के विद्रोह का इतिहास उस 81 की याजकाई को उसी संकट में जोड़ता है जो राफिया के युद्ध के ठीक पश्चात टॉलमी के विद्रोह के साथ समरेखित होता है। सब भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों की पहचान कराते हैं, इसलिए दिव्यता और मानवता के संयोग की याजकाई जो विजयी कलीसिया की याजकाई है और जो 80 मानवीय याजकों तथा एक दिव्य महायाजक से मिलकर बनी है उस इतिहास में पहचानी जाती है जो 2014 में आरंभ हुआ जब यूक्रेनी युद्ध प्रारंभ किया गया। उत्पत्ति की 12 अध्यायी श्रृंखला का मध्य अध्याय 17वां अध्याय है। इस 12 अध्यायी श्रृंखला का मध्य पद 22वां पद है। 22वां पद परमेश्वर और अब्राहम के बीच उस वार्तालाप के एक स्पष्ट अंत को चिन्हित करता है जो पहले पद में आरंभ हुआ था। इस प्रकार 22वां पद उस भविष्यद्वाणी संबंधी श्रृंखला के अंत की पहचान कराता है जो इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षरों की छाप धारण करती है। 22 पदों की इस श्रृंखला का मध्य पद 11वां पद है जो आगे चलकर उन 3 पदों का मध्य है जो 144,000 के ध्वज चिन्ह की पहचान कराते हैं। इसलिए 11वां पद 3 विशिष्ट पदों का मध्य है और 11वां पद न केवल उन 22 पदों के बल्कि उन 3 पदों के भी जिनके भीतर वो स्थित है प्रधान सत्य को व्यक्त करता है। इस प्रकार 11वें और 22वें पद को मुख्य विचार के आरंभ और अंत के रूप में चिन्हित किया जाता है। अतः 17वें अध्याय से 11वें से 22वें पद तक 11वें से 22वें अध्यायों का मुख्य विषय है। मत्ती की पुस्तक में 11वें से 22वें अध्यायों के बीच का मध्य अध्याय 16वां अध्याय है।
तब उसने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि वे किसी मनुष्य से न कहें कि वही यीशु मसीह है। मत्ती 16:20।
उत्पत्ति के मध्य बिंदु की भांति 20वां पद उस विशिष्ट वार्तालाप के समापन को चिन्हित करता है जो 13वें पद में उस समय आरंभ हुआ था जब मसीह और चेले कैसरिया फिलिप्पी पहुंचे थे।
जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो उसने अपने चेलों से ये पूछकर कहा, मनुष्य मुझे अर्थात मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई इलिया और कोई यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर देकर कहा, तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, धन्य है तू शमौन बार योना, क्योंकि मांस और लोहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। तब उसने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि वे किसी से न कहें कि वही यीशु मसीह है। मत्ती 16:13-20।
राफिया और पानियम।
मत्ती का मध्य खंड न केवल एक पृथक वार्तालाप और विषय का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि जैसे उत्पत्ति की गवाही का वाचागत प्रतीकवाद राफिया की लड़ाई के साथ मेल खाता है, वैसे ही मत्ती की वार्ता कैसरिया फिलिप्पी में होती है जो पानियम है। दानियल 11 के पद 15 का पानियम मत्ती की 12 ही रेखा का मध्य बिंदु है और दानियल 11 के पद 11 का राफिया उत्पत्ति की 12 ही रेखा का मध्य बिंदु है। 457 ईसा पूर्व में आरंभ हुए 4 वर्ष 10 ईसा पूर्व में समाप्त हुए जो पद 11 के राफिया और पद 15 के पैनियम के बीच का मध्य बिंदु है, जहां अब्राहम के खतने के चिन्ह और पतरस द्वारा मसीह के अंगीकार का संगम होता है। मत्ती की पुस्तक की वंशावली रेखा में पतरस उसके बपतिस्मा के समय मसीह परमेश्वर के पुत्र के प्रति अपनी पहचान की गवाही दे रहा है। शमौन का अर्थ है वह जो सुनता है,
और बारियोना का अर्थ है कबूतर का पुत्र। शमोन वह था जिसने मसीह के बपतिस्मे का संदेश सुना जब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। मसीह का बपतिस्मा 11 अगस्त 1840 का प्रतिरूप था जब प्रकाशित वाक्य 10 का बलवंत सदींदारो उतरा। वही स्वर्गदूत 9:11 को उतरा। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो 9:11 को 144,000 की पीढ़ी के लिए परीक्षा लेने वाले संदेश के रूप में पहचानते हैं। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पंक्ति पर पंक्ति की कार्यविधि का प्रयोग करते हैं। वो कपोत का पुत्र है, इसलिए पुत्र होने के नाते वो प्रतीसात्मक रूप से अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पतरस अंतिम पीढ़ी का एक प्रतीक है और उसके नाम की प्रतीसात्मक संख्या के द्वारा वो 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है। पतरस उस अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्यवाणी की रेखा में मसीह के प्रकट होने पर सामर्थ्य प्रदान के संदेश को सुनती है। पतरस ने मसीह के बपतिस्मा से संबंधित संदेश को पहचाना और इस प्रकार पतरस यीशु को अभिषिक्त जन के रूप में पहचान सका जो इब्रानी में मसीहा और यूनानी में क्राइस्ट है। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो समझते हैं कि प्रकाशित वाक्य 18 का वो स्वर्गदूत जो 9 किलोमीटर पर उतरा था वो 11 अगस्त 1840 को भी उतरा था। पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो 9 के को एक मार्ग चिन्ह के रूप में समझते हैं जो केवल 2 या 3 रेखाओं की गवाही से ही स्थापित होता है। पतरस की स्वीकृति वह ये है कि 9:11 तीसरे हाय के आगमन की पहचान कराता है जो अंतिम पीढ़ी के लिए परीक्षा का संदेश है। वही स्वीकृति वह स्थान है जहां नाम परिवर्तन होता है। अब्राहम राफिया में है और पतरस क्रूस से ठीक पहले पानियम में है। पानियम और क्रूस के बीच पतरस रूपांतरण के पर्वत पर जाने वाला है। पानियम ही वो स्थान है जहां शमोन पतरस में बदल दिया जाता है जब उसने अपनी पीढ़ी के लिए परीक्षा के संदेश के विषय में अपनी स्वीकृति दी। 144,000 के लिए वो परीक्षा का संदेश तीसरे हाय का इस्लाम है जो भविष्यवाणी के इतिहास में 9:11 पर पहुंचा। एडवेंटवाद की परीक्षा का आरंभ 9:11 पर हुआ और एडवेंटवाद की परीक्षा के अंत में तीसरे हाय के इस्लाम का संदेश ये पहचान कराता है कि शमोन का नाम कब और कहां बदला जाता है। वो संदेश जिसे पतरस अंत में समझता है और जिसका प्रतिरूप आरंभ में 9:11 के संदेश द्वारा दिखाया गया था, नैशविल के अग्निगोलों का संशोधित संदेश है। वहीं तुरहियों का पर्व ध्वज के आरोहण और प्रायश्चित के दिन के बंद द्वार के साथ साथ आ पहुंचता है। हम अगले लेख में इन बातों को आगे जारी रखेंगे।